ओम शांति। मेरे पास बहुत से भाई बहनों ने प्रश्न दिए हैं। वैसे तो बाबा कहता है प्रश्नों से पार प्रसन्न चित्त बनो, फिर भी प्रसन्न चित्त बनने के लिए प्रश्नों में क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे ये सेशंस में प्रश्न उत्तर रखा गया है। तो पहला प्रश्न ये है, कहते हैं मेरे परिवार वालों को बाबा का ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, फिर भी मैं यहाँ योग भट्टी में आई हूँ, तो उसका बोझ मेरे पर लगता है क्या?
पहले तो जो पीछे खड़े हैं वो बैठ जाएंगे, बहुत सारे भाई बहने खड़े हैं, वो पहले बैठ जाएंगे। जो भी खड़े हैं पीछे, प्रश्न है परिवार वालों को ज्ञान अच्छा नहीं लगता, उसके बाद भी यहाँ आए हैं, तो क्या ये बोझ है? उत्तर दो है। पहला उत्तर है नहीं। संगम युग का समय है, भगवान इस समय धरती पर आ चुका है और वो जो ज्ञान सुना रहा है संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, और संसार की आत्माएं उस ज्ञान को नहीं जानती, और यदि हमने उस ज्ञान को जाना है तो ये बहुत बड़ा भाग्य है। परंतु ज्ञान का मार्ग संकटों से भरा है, अवजानन्ति माम बुढ़ा, हे अर्जुन मूर्ख मुझे नहीं जानते, मेरा परिहास करते हैं, उन्हें पता ही नहीं मैं कौन हूं। और क्योंकि संसार की आत्माएं अज्ञान में है तो अज्ञान में उनके द्वारा विरोध होगा, निंदा होगी, ग्लानी होगी, परंतु वो अबोध है, अज्ञान में है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत शराब पी लेता है और बहुत चिल्लाता है, हंगामा करता है, लोग उसे किस दृष्टि से देखते हैं? रहम भाव से देखते हैं, ये नहीं कहते हैं कि इसका कोई दोष है, क्योंकि इस समय वो अंडर इन्फ्लुएंस है, इस समय किसी के प्रभाव में है। उस तरह मानवता भी माया के प्रभाव में है। इस यज्ञ की शुरुआत में बहुत विरोध हुआ, माताओं के साथ और बहनों के साथ बहुत अत्याचार हुआ, और जो अत्याचार करने वाले थे वो उनके अपने थे, पति था, भाई था, ससुर था, परंतु फिर भी उनकी लगन ऐसी थी कि पीछे नहीं हटी। इस अर्थ से देखा जाए तो जब जब ज्ञान का प्रकाश जहां होगा और हम वहां जा रहे हैं, जहां जहां सत्संग हो रहा है और हम वहां जा रहे हैं, जहां जहां परमात्मा ज्ञान सुनाया जा रहा है, जहां सत्संग है, जो सुबह सारी बातें बताई थी सत्संग की, वहां वहां हम जाए तो ये तो पुण्य का कार्य है, इसमें पाप हो नहीं सकता। परंतु इसका एक दूसरा पहलू भी है, चाहे अध्यात्म कितना ही ऊंचा ज्ञान हो, परंतु फिर भी व्यक्ति की व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, कर्तव्य भी है। उन कर्तव्यों को छोड़कर कोई ज्ञान योग करता है तो शायद उसके ऊपर बोझ होगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, स्पिरिचुअल कॉन्टेम्पलेशन शुड नेवर बी मेड एन एक्सक्यूज फॉर मटीरियल निग्लिजेंस। लौकिक जिम्मेवारी को न निभाने का आध्यात्मिक चिंता कारण न बने। हमने लौकिक जिम्मेदारी इसलिए नहीं निभाई क्योंकि यहां भट्टी थी, हमने लौकिक जिम्मेदारी इसलिए नहीं निभाई क्योंकि हमारा आकर्षण इधर था और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर के लोग, उनके प्रति हमारे जो कर्तव्य थे और जो अर्जेंट थे उसको छोड़कर हम यहां आ रहे और वहां डिससर्विस हो रही है, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि तुमने बहुत अच्छा काम किया ब्रह्मा कुमारीज में गए, वो तो यही कहेंगे कि तुम वहां गए और यहां ये हो गया। इसके लिए जब कर्तव्य पुकारे सब कुछ गौन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट। और ऐसी कोई खास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, कोई व्यक्ति है उधर के सारे काम करके सब कुछ करके हुए जो जो उसके काम है वो सब करके फिर अगर किसी भी सत्संग में जाता है जाती है तो फिर वहां कोई बोझ नहीं है, परंतु उधर के काम छोड़कर उनके संकल्प चलाते हुए वहां आता है यहां आता है तो वो बोझ है। और यदि ऐसा नहीं है, सब कुछ किया उधर के कार्य पूरे किए फिर आए और फिर भी उनके संकल्प चल रहे हैं तो ये उनकी समस्या है क्योंकि वहां पर अहंकार आहत हो रहा है इसलिए वो दुखी है, परंतु हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हां भी उत्तर है तो ना भी उत्तर है। दूसरा,
ये कैसे समझे कि हिसाब किताब पुराना चुक्त हो रहा है या नया बन रहा है?
चाहे बन रहा है या चुक्त हो रहा है इससे क्या करना है, बन रहा है तो ठीक, नहीं चुक्त हो रहा है वो भी ठीक। बाबा ने कहा है तुम इस प्रश्न में मत जाओ ज्यादा, हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या ये नया बन रहा है या पुराना ही चुक्त हो रहा है। चाहे बन रहा है चाहे चुक्त हो रहा है काम तो एक ही करना है साक्षी, काम तो एक ही करना है अनासक्त, काम तो एक ही करना है। हिसाब किताब की भी यात्रा है, जैसे जीवन की यात्रा है जन्म से चालू होती है मरण तक, जैसे ब्राह्मण जीवन की भी यात्रा है, कईयों का जन्म होता है और कई लोग ब्राह्मण जीवन में मर जाते हैं, उसी तरह हिसाब किताब की भी यात्रा है। ऐसा नहीं कि एक हिसाब किताब जीवन भर चलेगा, उसका भी एंट्री है और एग्जिट है, उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है। तो जो भी हिसाब किताब हो रहे हिसाब किताब की ये यात्रा भी सुखद हो जाए, इसलिए अब उसमें चाहे नए बन रहे हैं चाहे पुराने चुक्त हो रहे, ये दो बातें हैं। पुराने चुक्त हो रहे उसको भी अनासक्त भाव से चुक्तु करना है, नए बन रहे हैं ये भी कभी पता नहीं चलता है, परंतु यदि आसक्ति है सकाम कर्म कर रहे हैं तो वो बन रहे हैं। उसमें कोई इच्छा है हमारी, स्वार्थ है हमारा, बदले का भाव है या संकुचित दृष्टि है या हद की कामनाएं हैं तो वो नए हिसाब किताब बन रहे। चाहे कुछ भी हो हमें इन कार्मिक अकाउंट्स को साक्षी होकर देखना है। जैसे कोई बहुत अच्छा योगी है और अचानक बीमार पड़ जाता है तो ये प्रश्न व्यर्थ हो जाता है कि ये क्यों हुआ, जो हुआ अब उसको स्वीकार करो और जिन कारणों से हुआ उन कारणों को ढूंढो, जरूर कोई गलत आहार या गलत दिनचर्या या गलत जीवन शैली या प्रकृति के विरुद्ध गए होंगे तो ही बीमारी आई, पर जो भी है उससे सीखकर आगे बढ़ो। तो हिसाब किताब भी एक यात्रा है एक, और दूसरा इस यात्रा को सुखद बनाना है, चाहे वो कितने ही कड़े हिसाब किताब हो। जैसे लंदन में एक सन्यासी को पकड़ लिया गया था और उसको मर्डर का आरोप लगाया गया और उसको 23 साल के लिए जेल में भेज दिया। 18 साल के बाद पता चला कि जिसने खून किया था वो कोई और है, तो कोर्ट ने उस सन्यासी को छोड़ दिया। तो वो कहता है अब मुझे यही रहने दो, मेरी अच्छी साधना चालू है जेल में। और रही बात मर्डर की, ये तो मुझे पहले से ही पता है कि मैंने इस तरह का कोई काम किया ही नहीं, परंतु फिर भी जीवन के 18 साल में जेल में रहा, अर्थात ये किसी और जन्म का पाप है, फिर भी हो रहा है तो ये किसी और जन्म का पाप है। हम जिनके साथ रहते हैं, जो हमारे साथी है, जो हमारे सीनियर है और जो हमारे जूनियर है, ये तीनों ही कौन लोग हैं? क्यों हम उनके साथ आए? क्यों एक बच्चा किसी विशिष्ट घर में जन्म लेता है? क्योंकि कार्मिक अकाउंट्स है और उसे वो सेटल करना है अकाउंट्स, इसलिए वो बच्चा वहां आता है। इसलिए हम जहां पर भी है, हम किन के बीच आए हुए हैं? जो हमारे जन्म जन्म के शत्रु थे, वही हमारे घर में पत्नी, बच्चा, पति बनकर आ चुके हैं और उनसे हमें हिसाब किताब कुछ ना कुछ चुकतू होते रहता है। इसलिए इन हिसाब किताब को भी साक्षी होकर चुकतू करना है। इसलिए न्यूट्रल एक्शंस, नए हिसाब किताब क्रिएट नहीं करने हैं। इन प्रश्न के उत्तर प्राप्त होने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। चाहे उत्तर मिल भी गया कि यह तुम्हारा पुराना था इसलिए चुकतू हो रहा है, या तुम नया बना रहे हो, दोनों ही अवस्था में संकल्प कि मुझे ये चुकतू कर देना है, जितने लोगों के साथ हिसाब किताब फटाफट चुकतू हो जाए और हम मुक्त हो जाए। रही बात पुराने कर्मों की, तो उसके लिए आत्माओं से माफी मांगनी है। जैसे एक व्यक्ति था जो जन्मांध था, जन्म से अंधा, उसको हिप्नोटिक रिग्रेशन किया गया, पूर्व जन्म में लेके गए, जाति स्मरण, तब पता चला कि वो किसी जन्म में जल्लाद था एक राजा के पास, और वो लोगों की आंखें फोड़ता था। आंखें फोड़ना राजा ने राजाज्ञा है, वो पाप नहीं है, परंतु आंखें फोड़ते फोड़ते उसे बहुत मजा आता था, बहुत एंजॉय करता था वो दूसरों की आंखें सलाखों से फोड़ने में, बहुत अच्छा लगता था। वो जो अच्छा लगना था उसके वजह से इस जन्म में जन्मांध है। कृष्ण निंदा घड़ली मनुन महार जन्म प्राप्ति, शायद संत कहता है किसी जन्म में कृष्ण निंदा की थी इसलिए इस जन्म में महार बनकर जन्म हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं, जो भी है जैसा भी है, जो निंदा हुई, जो पाप हुए, जो विकर्म हुए, अब उन्हें प्रायश्चित करो, चुकतू करो, क्षमा मांग लो आत्माओं से और आगे बढ़ना है। तो दोनों ही अवस्थाओं में यह यात्रा को भी सुखद बनाना है। ओम शांति।
बाबा के यज्ञ में ईश्वरीय परिवार के सदस्य पूरा ईमानदारी से नहीं चलते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है, तो क्या करना चाहिए?
अंग्रेजी में कहावत है, रिजाइन एज द जनरल मैनेजर ऑफ द यूनिवर्स। इस सृष्टि के जनरल मैनेजर की पोस्ट से इस्तीफा दे दो, तुम्हें क्या करना है? ये जिसका यज्ञ है वो देखेगा, वो संभालेगा, ठेकेदार मैं हूं तुम नहीं। कौन क्या करता है, जो करता है उसको उसकी सजा मिलेगी। कर्मों का हिसाब इतना सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म मशीनरी है, कोई ईमानदार है कोई ईमानदार नहीं है, हमें उससे क्या। एक सूफी संत था जिसकी दुकान थी, बड़ा ही भोला था, और दुकान में छोटी छोटी बहुत सारी वस्तुएं थी। लोग आते थे और उसको कहते थे ये एक वस्तु दे दो, और चुपचाप दो लेके चले जाते थे। लोग आते थे, भाव करते थे, वो कहता था 5 रुपया, वो कहते थे 2 रुपए में दे दो, 2 लेके चले जाते थे। कोई लोग आते थे, झूठे सिक्के देते थे और वस्तुएं लेके चला जाते थे, बहुत ठगते थे उसको, बड़ा ही भोला सा था। तो लोग उसके साथ इस तरह से व्यवहार करते थे और वो कभी किसी को कुछ नहीं कहता था। जब उसकी मरण घड़ी आई तो उसने कहा, हे खुदा, मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये खोटा सिक्का है, ये सच्चा सिक्का है। और वो खुदा से कहता है, मैं भी खोटा सिक्का हूं, मैंने सब कुछ स्वीकार किया, अब तू भी मुझको स्वीकार कर, क्योंकि मैंने कभी किसी को जज नहीं किया। जज नॉट एंड ई शैल नॉट बी जज्ड, बाइबल में लिखा है, तुम्हें किसी का न्यायाधीश बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम कौन हो ये कहने वाले कि ये ईमानदार है वो ईमानदार नहीं? तुमको किसने ये अधिकार दे दिया दूसरों का जज बनने का कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये ब्रह्मचारी है, ये ब्रह्मचारी नहीं है, इसकी पवित्रता अच्छी है, उसकी पवित्रता अच्छी नहीं है, इसका योग अच्छा है, उसका योग अच्छा नहीं है, इसकी ज्ञान की धारणा है, इसकी ज्ञान की धारणा नहीं है। Who are you to decide? किसी के जीवन के न्यायाधीश हम नहीं। हमें केवल स्वयं को देखना है, दूसरों को नहीं। कौन क्या करता है, कौन कैसे करता है, वो जानेगा। यज्ञ उसका है, ये उसका काम है, वो हिसाब रखेगा। हम कौन है हिसाब रखने वाले दूसरे के जीवन के? यदि हमारे जीवन को कोई जज करे तो कितनी पीड़ा होगी हमको। यदि हमारे पर कोई किताब लिख दे जिसमें हमारी निंदा ही निंदा है तो अच्छा लगेगा? और उसमें सारी झूठी बातें हैं। हम जो दूसरों के विषय में सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, शायद वो सब कुछ असत्य है, आंखों का धोखा है, भ्रम है। क्योंकि बातें जिस तरह फैलती है कुछ और होती है, जो आंखों से दिखता है शायद वो सत्य नहीं है। एक साधु सुबह सुबह जा रहा है, समुंदर का किनारा है, अभी अभी ध्यान किया और ईश्वर का भजन मन ही मन गाते हुए जा रहा है, तो देखता है एक अद्भुत सा दृश्य। देखता है एक स्त्री है, उसके गोद में एक पुरुष सिर रख के लेटा हुआ है और वहां पर शराब की एक बोतल है। वो कहता है, देखो कैसा कलयुग आ गया, कैसा विकारी ये संसार है। और घृणा करने लगता है उस युवक से, उस स्त्री से, कि ये है पतन, चारित्रिक पतन संसार का। और वो नजदीक आता है और तब उसे पता चलता है सत्य तो कुछ और था। वो युवक जो था वो मछुआरा था, जो रात को निकला था मच्छी पकड़ने के लिए, रात भर भूखा, रात भर प्रयत्न करता था, सुबह थक चुका था। और वो जो स्त्री थी उसकी माँ थी, जो कि उसके घर में कुछ भी नहीं था खाने के लिए, तो वो एक पुरानी शराब की बोतल उसमें पानी भर कर ले आई अपने बेटे के लिए। और वो बेटा इतना थक गया कि उसकी गोद में सिर रखकर वो सो गया और वो बोतल वहां पड़ी थी। और इस साधु ने सोचा, ये कैसे विकारी लोग है, जो दिखाई दे रहा है शायद वो सत्य नहीं है। इसके लिए कौन ईमानदार है और कौन नहीं ईमानदार, इसका क्या प्रमाण है? और दूसरी बात, मैं स्वयं कितना ईमानदार हूं, इसका क्या प्रमाण है? क्या मैं स्वयं ईमानदार हूं? क्या मैंने भगवान से जो वादे किए थे वो सारे पूर्ण किए? क्या मेरे जीवन की जो पवित्रता है उसमें कितनी प्रामाणिकता है? इसलिए पर दर्शन व्यर्थ है। दूसरे क्या सुना रहे हैं उसके ऊपर से कोई निष्कर्ष नहीं निकालना है। मन को कहकई नहीं बनने देना, नहीं तो कानों में मंत्रा कुछ ना कुछ डाल देगी। ओम शांति।
हमारी बुद्धि में ज्ञान है परंतु हर बार वही गलती रिपीट हो रही है, यह भी पता है कि यह गलत है, उसका परिणाम भी गलत ही होगा। बार बार दुख देखे और दर्द का अनुभव भी किया, कर लेने के बाद बहुत पश्चाताप भी होता है, पर वह गलती फिर भी होती है, कंट्रोल नहीं होता है, कैसे कंट्रोल करें?
अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 1969, इस यज्ञ की सबसे पहली अव्यक्त वाणी ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद चली हुई 21 जनवरी 1969। इस मुरली में बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा दी है। ज्ञान तुमको याद बहुत है, ज्ञान तुम्हारे पास बहुत है, परंतु तीव्र पुरुषार्थ अर्थात समय पर ज्ञान याद आ जाना, यह डेफिनेशन है तीव्र पुरुषार्थ की। ज्ञान तुम्हारे पास बहुत है परंतु समय पर ज्ञान याद आ जाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। और व्यक्ति वही वही गलती फिर कर रहा है, अर्थात गलती का एहसास नहीं, अर्थात इस ज्ञान को उस समय अप्लाई नहीं कर पा रहा, अर्थात चिंतन की कमी है। अपने किए हुए पापों का जब तक प्रायश्चित आत्मा नहीं कर लेती, तब तक वही वही गलती फिर करती रहेगी। गहराई से रियलाइजेशन नहीं है, गहराई से आत्मबोध महसूसता पावर ऑफ रियलाइजेशन की कमी है। महाभारत में दिखाया है द्रौपदी दुर्योधन से कहती है अंधे का पुत्र अंधा, उसके बाद युधिष्ठिर द्रौपदी से मिलने आते हैं और द्रौपदी से कहते हैं क्या तुमने दुर्योधन को ऐसा कहा अंधे का पुत्र अंधा? उसने कहा हां मेरे से गलती हो गई और मुझे आप कोई दंड दे दो। तो युधिष्ठिर कहता है ये पाप ऐसा नहीं है कि जिसके लिए दंड दिया जाए, इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि दुर्योधन को तुमने अपने अभिमान के शिखर से गिराया है और इसमें तीन पाप हो गए हैं। एक तो वो उस समय हमारा अतिथि था, तुमने अतिथि का अपमान किया। दूसरा वो मेरा अनुज है, इसलिए तुमने अपमान किया। और तीसरा हमारे जो ज्येष्ठ पिता है धृतराष्ट्र, उनका भी तुमने अपमान किया। और दुर्योधन उन व्यक्तियों में से नहीं है जो चोट खाकर भूल जाए, अपमानित होकर भूल जाए, इसके लिए प्रायश्चित करना होगा। आत्मा एक ही गलती बार बार करती जा रही है, बार बार करती जा रही है, धीरे धीरे आदत हो जाती है गलतियों करने की। बाबा कहते हैं जेल बर्ड बार बार जेल में जाते रहता है। अगर गलती हो रही है और यह भी पता है ये गलती है, स्टॉप, एकांत में जाओ और एकांत की जितनी बातें कही थी 12 के 12 वो सब करो, तभी इस गलती से मुक्त हो सकेंगे या वो गलती को बार बार नहीं करेंगे। दूसरी बात, उस गलती के कारण क्या है उसको ढूंढना है, ट्रिगर्स क्या है, क्या होने के बाद वो गलती होती है, क्यों क्रोध आता है, क्यों काम का वेग अंदर जन्म लेता है, क्यों ईर्ष्या आती है, कौन से ट्रिगर्स है, कौन से उत्प्रेरक है, कौन से कैटलिस्ट है, कौन से कारक है, कौन से कारण है, उन कारणों को ढूंढो और कारणों को नष्ट करो, नहीं तो वो गलती फिर होती रहेगी। पुनरपजन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम, और यह क्रम चालू ही रहेगा गलतियों का, जैसे जन्म का मरण का क्रम है वैसे ये गलतियों का क्रम भी चालू रहेगा। फिर गलती करो, फिर पश्चाताप। एक अव्यक्त वाणी है 1972, बाबा ने कहा है तीन चीजों को तुम्हें ब्राह्मण जीवन की रीति रस्म नहीं बनानी है, 3P। पहला पाप करना, दूसरा पश्चाताप करना और तीसरा पार्डन माफी मांगना। बार बार पाप करो, बार बार पश्चाताप करो, बार बार बाबा को सॉरी कहो, बार बार लेटर लिखो और फिर वही गलती करो। इन 3 P's को ब्राह्मण जीवन की रीति रस्म नहीं बना देना। बाबा सॉरी कितना भी सॉरी कहो, एक समय आएगा वो कुछ नहीं सुनेगा। अभी विदेश की एक बहन के द्वारा संदेश आया था, उस संदेश में अव्यक्त बाबा खड़े हैं और बाबा के सामने मधुबन निवासी है, सेंटर की समर्पित बहने हैं, सेंटर की समर्पित भाई है, मधुबन के समर्पित भाई है, और बहुत सारे अनन्य ब्राह्मण आत्माएं हैं, और वो सारे रो रहे और बाबा से कह रहे, बाबा हमसे गलती हो गई, बहुत सारी ब्राह्मण आत्माएं हैं पुराने पुराने, और आंखों से आंसू बहा रहे, बाबा आपका बनने के बाद भी हमसे पाप हो गया, बाबा हमको माफ कर दो। और बाबा कुछ नहीं, नो रिएक्शन, जिसने जो किया उसको उसका फल मिलेगा, भगवान संपूर्ण साक्षी है। ऐसा भी समय आएगा, अभी वो प्रेम का सागर है, फिर वो धर्मराज हो जाएगा। अभी प्राप्तियों का समय है, फिर पश्चाताप का समय हो जाएगा। इसलिए अपनी गलतियों के लिए स्वयं के साथ धर्मराज के रूप में पेश आना है, ढूंढना है गलतियों का कारण, ठीक करना है, प्रायश्चित करना, पश्चाताप करना, स्वयं को सजा देना, और प्रतिज्ञा करना कि अब के बाद कुछ भी हो जाए ये गलती नहीं होने देंगे। सारी गलतियां अब तक कर ली सो कर ली, आज के बाद या फिर इस भट्टी के बाद फिर से ये होने नहीं देंगे। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा जब बच्चे करेंगे तो बाबा की मदद मिलेगी। ओम शांति।
मैं गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए बाबा की ज्ञान में चल पड़ा। घर पर युगल रोज ब्रह्मा भोजन बनाती है, भोग लगाती है, मन शांत रहता है, लेकिन जब जब हमें तोड़ निभाने अर्थ अपने रिश्तेदारों, मित्रों संबंधित के शादी विवाह, जन्मदिन के कार्यक्रमों में शामिल होना होता है, तो हम वहाँ भोजन ग्रहण कर लेते। तो इस कार्यक्रम के बाद लगभग 2-3 दिन तक मन खाता रहता है कि मेरे नायक हमने यह भोजन खाया। जब हमें भोजन ग्रहण करने से मन मना करते तो वे जिद करते या तो ब्रह्मा कुमारी इसके लिए गलत सोचते हैं। कृपया इस असमंजस से मुझे निकालने में मदद करो।
एक युवक आबू आने के लिए ट्रेन में था और ट्रेन अहमदाबाद से आगे बढ़ रही थी। जिस बुगी में वो बैठा था वहां पर कुछ लोग आ गए बाहर के, और भोजन का समय था, सबने अपने अपने टिफिन खोले, वो सारे दोस्त लोग थे, और उन्होंने इस ब्रह्मा कुमार युवक से कहा, आप भी थोड़ा खा लो। तो इस युवक ने कहा, नहीं नहीं हम लोग बाहर का नहीं खाते। उन्होंने कहा, घर का है, हमारी माँ ने बनाया है। तो फिर उसने कहा, नहीं नहीं मैं अभी अभी खा चुका हूं। तो उन्होंने खाया, और खाने के बाद बिस्किट का पैकेट निकाला और इसको दिया, इस ब्रह्मा कुमार को, कि तुम भी खा लो, तो इतना तो खा ही सकते हो, तुमने भोजन तो किया नहीं, कम से कम बिस्किट तो खाओ। तो उस ब्रह्मा कुमार ने सोचा, बिस्किट तो खा सकते हैं, मशीन मेड है, बिस्किट खाने में क्या है, बाबा ने कहा है कि खा सकते हो, परिस्थिति के समय खा सकते हो, सुविधाजनक श्रीमत, फिलॉसॉफी ऑफ कन्वीनियंस, इसका एक दूसरा भी उदाहरण है। बाबा कहते हैं, मिलिट्री में जो है वो मजबूरी में खा सकते हैं। अब मिलिट्री से रिटायर हुए 20 साल हो गए और कहते हैं कि बाबा ने मिलिट्री वालों के लिए खाने के लिए हाँ किया है, इस मुरली में इस तारीख में, बाबा आपने ही कहा था। अभी मिलिट्री से रिटायर होके 20 साल हो गए फिर भी चालू है। तो उस युवक ने वो बिस्किट खा लिए, और जब उसकी आंख खुली तो वो अजमेर में था और उसका सारा सामान गायब। ठग थे वो, ठग कर ले गए, सारा सामान गायब।
ये जो श्रीमत है भोजन की, हमें मित्र संबंधियों के घर जाना पड़ता है और फिर वो आग्रह करते हैं और फिर हमें खाना पड़ता है और हम खाते हैं और फिर आत्मग्लानि होती है, फिर अपराध भाव जागता है, फिर 2-3 दिन कुछ भी नहीं ठीक लगता है, योग भी नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि अगर मुरली में उसी दिन वो बात आ गई तो बस, तो फिर घायल, क्या किया जाए। जैसे मिलिट्री वाले लोगों को कैसे हमने स्वीकार कर लिया, क्या उनको लज्जा आती है कि मैं इस ड्रेस में जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। हॉस्पिटल की नर्स कैंपस में घूमती है हॉस्पिटल के कपड़ों में, क्या उसको लज्जा आती है कि मेरा ये ड्रेस देखकर लोग क्या कहेंगे। वो सरदार जी होते हैं, पगड़ी बांधते हैं, पगड़ी बांधते समय ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। उसी तरह हमारी जो धारणाएं हैं वो भी सूक्ष्म है, और यदि हम लोगों को समझाएं कि ये हमारी धारणा है हम ऐसा करते हैं, वो भी समझ जाएंगे, परंतु हम ही अगर एडजस्ट करते रहेंगे तो वो कभी भी नहीं समझेंगे। हम भी सोचेंगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो वो भी सोचेंगे ठीक है। ये हमारे निश्चय पर निर्भर है। आज ये खा रहे, कल वो नॉनवेज भी हो सकता है, वो कहेंगे खा लो, एक बार खाने से क्या होता है, तुम 20 साल के योगी हो, क्या तुम्हारी 20 साल की तपस्या एक बार खाने से खत्म हो जाएगी। ये प्रश्न तो दादियों के लिए भी कहा जा सकता है, 80 साल की योगी है, कोई कहेगा एक बार होटल में रेस्टोरेंट में खा लो तो होगा कुछ नहीं, परंतु उदाहरण कैसा होगा, वो जो हम करेंगे दूसरे भी हमें हमारा अनुकरण करेंगे, जो अभी अभी आए हैं ज्ञान में वो भी हमें फॉलो करने लगेंगे, वो भी कहेंगे हाँ ये चलता है हाँ ये चलता है, जबकि भगवान की श्रीमत है कि तुम्हें पवित्र अन्न खाना है, जैसा अन्न वैसा मन होगा। और अब भी बाहर का खाना चालू है तो कहाँ से योग लगेगा, अभी भी उन आत्माओं के हाथों का खा रहे जिनके मन में विकार है, अपवित्रता है, देहभान है, अज्ञानी है, तो अन्न में भी वो सारे प्रकंपन जाएंगे और वही हम खाएंगे। चाहे स्थान हो चाहे भोजन हो, सभी का असर है शरीर पर मन पर। आयुर्वेद कहता है जो अन्न हम खाते हैं उसके 3 भाग होते हैं। सबसे निचला भाग अन्न का मलमूत्र बनता है, दूसरा भाग शरीर बनता है, और तीसरा भाग मन बनता है। इसलिए जो हम खा रहे हैं वही हम बनेंगे। इसलिए सबसे पहले तो अपनी धारणाओं को पक्का करना है, उनको हम नम्रता से विनम्रता से समझा दें कि ये हमारे नियम है, पहले हम ऐसे थे अभी हम यहाँ हैं और ये हम करते हैं। अगर नहीं तो फिर ये आत्मग्लानी होती रहेगी, और आत्मग्लानी गिल्ट कॉन्शियसनेस बहुत ही खतरनाक इमोशन है, कुछ नहीं करने देता। सुबह भी चर्चा की थी हमने उस पादरी की कहानी, गिल्ट कॉन्शियसनेस। तो स्पष्टता जो धारणा है उनके बारे में कहना, या फिर युक्ति से चलना, या फिर ऐसे जगह पर जितना हो सके कोई ना कोई बहाना देकर अवॉइड करना, कुछ ना कुछ तो युक्ति रचनी पड़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर ऐसी अवस्थाओं में फंस ही गए तो एक तो बाबा का आह्वान और बाबा कुछ ना कुछ मदद करेगा, दूसरा यदि खाना ही पड़े तो फिर उसे शक्तिशाली दृष्टि देते हुए वो लास्ट स्वीकार करना। ओम शांति।
मैं ब्रह्मा कुमारीज का रेगुलर विद्यार्थी हूँ, नियमित क्लास करता हूँ, ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो दीदी आप धन की सेवा का महत्व समझाते हैं जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या यह बाबा की श्रीमत है या दीदियों की श्रीमत है? जब भी मुझे धन लगाने की श्रीमत मिलती है तब मेरी मन की स्थिति खराब हो जाती है, फिर मेरा मन क्लास में रोजाना क्लास जाने का नहीं करता, मैं क्लास मिस करता हूँ, मुझे स्वयं में बाबा में ज्ञान में संशय आने लगता है, कृपया मार्गदर्शन करें।
ये तो दीदियां ही बताएंगे ये प्रश्न दीदियों के लिए है जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। बाबा सब कुछ तेरा है पर ये माल मेरा है, हम तेरे लिए हैं। छाती फाड़ के दिखा दो तो अंदर तू ही बैठा है, हनुमान हूं मैं, अंदर शिव बाबा। बाबा कह रहे तन मन धन सब दे दो, बाबा कह रहे बच्चे कहते तन तुम्हारा मन भी तुम्हारा परंतु माल मेरा। धन पर कुंडली मार कर बैठे सांप की तरह, भगवान को तुम्हारे धन की आवश्यकता नहीं है, धन हम इसलिए दे रहे हैं अपना भाग्य बनाने के लिए। वो चाहता तो किसी भी करोड़पति को टच करा दे, एक एक सेंटर एक एक बड़ा बड़ा रिट्रीट सेंटर बन जाए, एक एक सेंटर, परंतु अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा परमात्मा तालाब गरीबों की पाई पाई से भरेगा, परमात्मा तालाब गरीबों की पाई पाई से भरेगा। इसलिए हम जो उसे दे रहे हैं वो उसके लिए नहीं दे रहे, किसी दीदी के लिए नहीं, किसी दादा के लिए नहीं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, हमारा धन जो है वो ईश्वरीय कार्य में सफल हो। वैसे भी ये धन जो अब तक हमने कमाया है, जो अब तक हमारे पास है, रहेगा क्या? रहेगा? किसी की कुछ तो किसी का कुछ तो किसी का कुछ। सिकंदर जब मरा, अलेक्जेंडर द ग्रेट, तब उसने कहा मैं जब मरूंगा तो मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर हो। उसके साथियों ने कहा पर ऐसा कोई रिवाज नहीं है यहां पर हमारे में। उसने कहा ऐसा ही हो, यह इसका सूचक है कि मैंने इतना धन कमाया परंतु जाते समय मेरे भी दोनों हाथ खाली है। तो जो कुछ हमारे पास है सब कुछ सफल हो जाए, वैसे भी हम क्या कर रहे हैं? अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। अपने बच्चे, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा पत्नी, बस इसी में जी रहे। एक संकुचित जीवन है, इतने ही दायरे में है। और जो मुरलियों में आता है और जो बातें दीदियों के द्वारा सुनाई जाती है, वो दीदी क्या करेगी धन का? ये ना भूलो, ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, अपना संपूर्ण यौवन, अपनी सारी इच्छाएं परमात्मा के यज्ञ में स्वाहा कर दी है। यज्ञ की वेदिका पर अपना सर्वस्व स्वाहा करने वाली आत्माएं साधारण नहीं है, ये वही आत्मा है जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। ये वही दुर्गा है, ये वही भवानी है, ये वही अष्ट शक्तिधारी है, ये वही काली है, ये वही वैष्णवी देवी है। इनका अपने लिए कुछ नहीं है, अगर होता तो संसार में ये होती और संसार में बहुत कुछ कर सकती जो संसार की स्त्रियां कर रही है, पर संसार की स्त्रियां इनके सामने मिथ्या गौन कुछ भी नहीं है। इसके लिए इनके प्रति व्यर्थ संकल्प चलाना महापाप के भागी बनना है। और ये ना भूलो उस स्थान पर इन्हें रखा किसने है? किसी देहधारी ने? किसने रखा है? स्वयं भगवान ने चुना है, स्वयं भगवान ने रखा है। गुरु भाई है ये। टीचर किसने बनाया है? किसी देहधारी ने। और उनके मुख से जो निकलेगा वो उसका प्रतिनिधित्व कर रही है। इसके लिए ये सोचना मूर्खता है। चाहे वो कैसी भी हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ी लिखी नहीं है, चाहे छोटी है, चाहे मैच्योर्ड नहीं है, और तुम समझते हो हम ज्यादा अनुभवी है, ये हमको क्या सिखाएगी? यह तुमको इसलिए सिखाएगी क्योंकि उसको भगवान ने निमित्त बनाया है। पांच हजार साल में भगवान जब एक बार धरती पर आए और उसके कार्य के लिए उसने जिन आत्माओं को चुना, क्या वो साधारण हो सकती है? नहीं। और रही बात धन की, वैसे भी सब कुछ नष्ट होना है, कुछ भी नहीं बचेगा। और तुम जो धन लगाओगे वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं लगा रहे हो, और यदि धन देते समय पीड़ा होती है अर्थात ग्रीड अभी भी है, अर्थात विकार है, अर्थात लोभ अभी भी पकड़े हुए है, अर्थात अभी भी समर्पण संपूर्ण नहीं है, और धन का महत्व तो है परंतु मूल्यों के सामने वो गौण है तो सेवा में लगा दो, यही उस धन की सार्थकता है। ओम शांति।
मुझे इन दीदियों में बहुत सारी कमियां दिखाई देती है, मुझे पता है कि यह संपूर्ण नहीं बनी है, परंतु जब भी यह ज्ञान सुनाती है तो ऐसे सुनाती है जैसे कि यह संपूर्ण बन गई है। योग में मेरा यही चिंतन चलता है, योग नहीं लगता है।
ये दीदियों का बड़ा शुभ चिंतक है
भाई जी। और आगे ये कहा है, हम यज्ञ में धन सेवा देते हैं, उसका दीदियां मिसयूज करती है, तो फिर उसका बोझ किसके ऊपर?
दीदियों का क्या कहना है? आज सुबह की मुरली तो याद है ना सबको, खामियां किसकी देखनी है? स्वयं की। दूसरा क्या करता है, दूसरे ने क्या किया, ये तुमको देखना ही नहीं है। एक बार हमने कुछ दे दिया कि अब ये नहीं सोचो कि ये लोग इसका क्या करेंगे। एक कुमार है सेंटर पर, क्या कहेंगे, वो MP3 प्लेयर दे दिया, फिर दीदी के साथ झगड़ा हो गया और फिर कहता है कि वो मुझे थोड़ा प्लेयर चाहिए था 2 दिन के लिए, और लेके गया और बाद में लाया ही नहीं। तो ये कैसा दान था? दान अर्थात एक बार दे दिया तो छोड़ दो, आगे ने व्यक्ति ने उसका क्या किया ये तुम्हारा काम नहीं है। यज्ञ में जो दे दिया वो दे दिया, स्वाहा, वो भगवान जानेगा। हमने उसके लिए दिया, किसी व्यक्ति के लिए नहीं दिया। हाँ, यदि कोई व्यक्ति को देख के देता है वो तो हलचल होगी। हमने कोई वस्तु दी किसी को, किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को स्वेटर दे दिया, अब दूसरे दिन देखा आज पहना ही नहीं, तीसरे दिन भी नहीं पहना, रोज पहनता नहीं, अब चिंतन चल रहा है आखिर किया क्या, वो स्वेटर कहाँ है? और पूछ भी नहीं सकते तुमने किया क्या, कैसी दुविधाजनक स्थिति है। दे दो तो ऐसा दे दो कि फिर उसका चिंतन नहीं, फिर वो खुद पहने या किसी और को दे दे, व्हाट इज दैट टू यू, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात खामियां देखने की, तो इस संसार में तो कोई भी संपूर्ण नहीं बना है, सभी प्रयत्न जरूर कर रहे हैं परंतु हरेक की अवस्था अलग अलग है। यदि हम ये सोचे कि किसी के अवगुण ही देखने हैं तो वो कहीं पर भी दिखाई देंगे। जैसे कोई स्कूल का टीचर अपने विद्यार्थियों से कहता है तुम्हारा उत्तर गलत है, तुमने स्कूल की स्पेलिंग गलत लिखी है, SCHOOL, तो स्टूडेंट कहता है पर मैंने तो वही लिखी SCHOOL। वो कहता है नहीं, जो ओ पहले आना चाहिए था वो ओ तुमने बाद में लिखा इसलिए तुम गलत हो, डबल ओ जो है वो ओ पहले आना चाहिए था, वो तुमने बाद में लिखा, ये तुम्हारी गलती है। जिसको गलती निकालनी है वो तो कहीं से भी निकालेगा। यदि दृष्टि ही अवगुणी है तो वैसा ही दिखेगा। यदि हमने संकल्प ही कर लिया कि सबके गुण देखने हैं तो फिर नहीं दिखेगा। सबसे पहली भट्टी बहनों की हुई थी मधुबन में 71 या 2 में। तब दादी प्रकाशमणि या शायद अव्यक्त बाप दादा ने, किसने पता नहीं, सारी बहनों को एक काम दिया गया था, एक दूसरे के गुण लिखना। बहुत मेहनत का काम हो गया था, एक एक घंटा लगा था दूसरे के गुण लिखने के लिए, गुण लिखने के लिए एक घंटा। और कहा कि अवगुण लिखो फटाफट, 25 अवगुण लिखने को कहा था, 50 रेडी है बिना सोचे, इतना फास्ट फटाफट। ये अमृत वेला लेट उठती है, दूसरा मुरली के समय इसको नींद आती है, तीसरा इसका मोबाइल हमेशा बजता है, चौथा सेवा में टाइम पे कभी नहीं आती, फटाफट फटाफट अवगुण। और गुण लिखो, अरे बाप रे, एक भी गुण नहीं है इसमें। पहला तो यहां से चालू होता है। भक्ति मार्ग में कहते थे मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, और ज्ञान में आने के बाद इन निर्गुण हारों में, ये जो ब्राह्मण परिवार है इनमें तो एक भी गुण नहीं है। पता नहीं भगवान ने कैसे सिलेक्ट कर लिया, हमको तो गुण दिखते ही नहीं इनमें, सब अवगुण की खान है, एक 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 से एक खतरनाक है यहां पर। तो संकल्प ही कर लिया कि अवगुण ही देखने हैं तो दीदी क्या किसी में भी अवगुण ही अवगुण दिखेंगे, और यदि गुण ही देखने हैं तो कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, उसमें गुण ही दिखाएंगे। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, इन्वर्टेड कॉमा, बाप में और तुम बच्चों में एक अंतर है। यदि किसी बच्चे में 9 अवगुण है और एक गुण है तो बाप उस गुण को देखता है, और तुम बच्चे किसी में 9 गुण है और एक अवगुण है तो तुम क्या करते हो, बराबर उस अवगुण को देखते हो, उसको बड़ा करते हो, फिर अपने जेब से खर्च करके उसमें मिर्च मसाला डालते हो, छोक लगाते हो और उसको परोसते हो और फैलाते हो। स्वयं को देखना है। ओम शांति। लास्ट प्रश्न, क्योंकि हमको योग भी करना है।
बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते हैं। हम सुनते हैं कि आप भोजन ही नहीं करते, सिर्फ जूस लेते हैं, तो इसमें हमारे पुरुषार्थ पर क्या असर हो सकता है?
ऐसा कुछ नहीं है, सुनने का दोष है। भोजन और ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। बाबा ने कहा है एक एक कणा यज्ञ का मुहर के समान है। 16 फरवरी 1988 अव्यक्तवाणी। जितने भी सेवा केंद्र हैं या मधुबन है, हर जगह पर, कई जगह ये महावाक्य लिखे हुए हैं, ये मुरली सहित, कि ये ब्रह्मा भोजन दुख भंजक भोजन है। ये ब्रह्मा भोजन दुआ और दवा का काम करता है। अब भोजन का तो बहुत महत्व है, भोजन बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी हम नहीं ले सकते यहाँ पर, परंतु हर एक आत्मा की प्रकृति शरीर की अपनी अपनी है। जैसे कोई डायबिटीज है और जिसका शुगर 400-500 हो गया है, अगर वो कहे कि ये तो ब्रह्मा भोजन है मैं तो खाऊंगा और बाबा देख लेगा, बाबा नहीं देखेगा इसमें। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, माताएं आती है 300 शुगर, वो हम कहते हैं दवाई, दवाई की जरूरत नहीं, बाबा है ना वो देख लेगा। आहार बहुत बड़ी साधना है, और जैसे कहा इसका विस्तार बहुत बड़ा हो सकता है, अभी हम नहीं करेंगे, जिसको पूछना है वो व्यक्तिगत मिल सकते हैं, परंतु हरेक को अपना आहार सेट करना है। दो ही चीजों की सेटिंग ब्राह्मण जीवन में जरूरी है, भोजन और नींद, बस। और डाइट जो है निरंतर एक्सपेरिमेंट है। महात्मा गांधी ने लिखा है, मैं मैंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रयोग भोजन पर किए हैं। ये खाया तो क्या परिणाम, वो खाया तो क्या परिणाम, कुक्ड खाया तो क्या, रॉ खाया तो क्या, बॉइल्ड खाया तो क्या, स्टीम्ड खाया तो क्या, अलग अलग भोजन का शरीर पर अलग अलग प्रयोग परिणाम, किस भाव से व्यक्ति खा रहा है उसका भी असर है। तो ये प्रश्न को हम यही छोड़ रहे हैं, क्योंकि डाइट बहुत बड़ा विषय है और थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, विवादित भी है, इसलिए इसका उत्तर हम कभी और जिसको पूछना है वो व्यक्तिगत रूप से पूछे तो उसको दे सकते हैं। ओम शांति। सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे। अब बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर कभी नहीं दिए जा सकते, वो प्रश्न ही नष्ट हो जाए, यही उसका उत्तर है।